पृष्ठ संख्या 308। लेकिन धीरे धीरे इन मातृवंदनाओं से कवि शरणागति की करुण जर्जर प्रार्थनाओं में उतरता है। शुरू का उसका अमूर्त देव प्रभु या जननी संबोधन यहाँ अधिक मूर्त और सघन हो उठता है। अपने दलित दुरतिग्रस्त एकाकी तथा भयार्त होने की अनुभूति बार बार उसे घेरती है और वह शरण की कारुणिक प्रार्थनाओं पर उतर आता है। प्रभु संबोधन के अतिरिक्त वह कृष्ण, राम, शिव, विष्णु, हरि और गंगा की प्रार्थनाएं करते हुए नजर आता है। इन संबोधनों में राम के प्रति उसका समर्पण सर्वाधिक है। शायद दुख हरण त्राता के रूप में राम का व्यक्तित्व उसे ज्यादा पृष्ठ संख्या 309 आकर्षित करता है। लेकिन यह सारे संबोधन अपने नाम के अर्थों में निराला के निकट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सारे संबोधन अरूप अधिक हैं। वह सिर्फ प्रभु हैं, अनामय, शक्तिमंत, शरणदाता प्रभु, जिनकी प्रार्थना कवि इन संबोधनों के माध्यम से करता है। वही हजारों सांसारिक वृत्तियों के बाद शरण देंगे, वही सारी विषय वासनाओं, सारे माया जालों से मुक्त करेंगे, क्योंकि वही काम रूप हैं, वही अशरण शरण हैं, विपदा हरण हरि हैं। इसीलिए उन्हीं का रूप दर्शन, उन्हीं का नाम भजन श्रेयस्कर है। वही अंतर बाहर का सारा अंधकार दूर करेंगे, सारी आत्म पराजय, दुख, जर्जरता, एकाकीपन और कारुणिक अवसन्नता का शमन वहीं उन्हीं चरणों में समर्पित होने से होगा। इसीलिए कभी उन्हें तिमिर हरण, तरणी तरण, किरण हरण है कहता है। वहाँ अंधकार और प्रकाश सभी का परिशमन है। वह सिर्फ तिमिर हरण ही नहीं, किरण हरण भी हैं। इसीलिए निराला लोक आलोक दोनों के समंतरण की बात अपनी प्रार्थनाओं में करते हैं। प्रभु के उस स्नेह स्पर्श के आगे महत्तम मानुषीर परश निराला के लिए बेकार सा हो गया है। इसीलिए कवि उन्हें जय अजय अप्रमेय कहता हुआ जब शिव, विष्णु, शंकर, कृष्ण और राम इन नामों से संबोधित करता है, तो वह यह कहना नहीं भूलता कि ये सब शतविध नाम अनुबंध हैं। उसी अप्रमेय प्रभु के भिन्न भिन्न संबोधन हैं। सारी जल्पना, सारी बड़बोली, सारा काव्य, अंतः संगीत, आत्म साक्षात्कार, सारे दुखांत, सारी विडंबनाएं, सारे विचार वहीं उन्हीं चरणों में जाकर परिशमित हो जाते हैं। यह मौन की चरम महिमा है, प्रभु के कृपा भाव की चरम उपलब्धि है, शरणागति की अप्रमेय अवस्था है, पूर्ण प्रपत्ति भाव है, जिसकी उच्छल प्रार्थनाएं निराला अपने रचना जीवन के शुरू से ही करते हुए दिखाई देते हैं। डोलती नाव प्रखर है धार में जो कारुणिक आवाहन व्यक्त हुआ है, उसी की अंतिम परिणति सलिल सार ओ में होती है। प्रपत्ति की इस पूर्ण मन स्थिति में बार बार अपनी दुख, जर्जरता, अपने नैश, एकाकी क्षण का उल्लेख करता हुआ कवि शरण की प्रार्थना करता है। एक चलता नहीं हाथ, कोई नहीं साथ, उन्नत विनत माथ, दो शरण दो शरण, दो दुरति दूर करो नाथ, अशरण हूँ गहो हाथ, हार गया जीवन रण, छोड़ गए साथी जन, एकाकी नैक्ष क्षण, कंटक पथ विगत पाथ। पृष्ठ संख्या 310। तीन उन चरणों में मुझे दो शरण, इस जीवन का करो हे मरण, आगे पीछे दाएं बाएं, जो आए थे वह हट जाएं, उठे सृष्टि से दृष्टि, सहज मैं करूं लोक आलोक संतरण। चार दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा, देख वैभव ना हुनत सिर, समुद्धत मन सदा स्थिर, पार कर जीवन निरंतर, रहे बढ़ती भक्ति वरुणा। पांच जगत जाल छाया, माया ही माया, सुझता नहीं है पथ, अंधकार आया, तिमिर भेद शरदो। छे विपुल काम के जाल बिछाकर, जीते हैं जन जन को खाकर, रहूं कहां मैं ठौर न पाकर, माया का संहार करो हे। लेकिन इस पूर्ण प्रपत्ति, इस आकुल जर्जरता की मनोदशा में शरणागति की करुण प्रार्थना सिर्फ निजी मुक्ति में ही समाप्त नहीं होती। मैं पीछे भी इसका जिक्र कर आया हूँ। निराला अपनी मुक्तावस्था के साथ सार्वजनिक मुक्ति को जोड़ना कभी नहीं भूलते। अवसाद, भय, आत्मक्षय के परिशमन के बाद वे फिर इस आत्ममुक्ति से आगे बढ़ते हैं। जिस तरह अपनी मातृ प्रार्थनाओं में वे अनगिनत जन के शरण में आने के बाद मधु ऋतु अवनि के खुलने की चर्चा करते हैं, उसी तरह यहाँ इन गहन प्रार्थनाओं और निजी शरणागति की पूर्ण क्षणों में भी उस मधु ऋतु अवन या उस अनगिनत जन को नहीं भूलते। अपनी इसी धारणा के कारण वे भक्ति की परंपरागत आराधना से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सेवा प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करते हुए वे सिर्फ अपने ही नहीं सारे मानव मन के भ्रम जाल को काटने की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि लोग दिग्भ्रमित हैं, स्वार्थांध हैं, स्पर्धा गर्ल में गिरे हुए हैं, एक दूसरे को खा खा कर जी रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। अगर कभी आत्मक्षय से पीड़ित है, दुख जर्जर है, नैश एकाकी क्षणों के भय में तन्मय है, तो सारा मानव मन भी इसी जगत जाल की भयावह छाया से घिरा हुआ है। यदि कवि को तिमिर वेधने के लिए प्रकाश शरों की जरूरत है, तो इस समग्र मानव जाति को भी है, क्योंकि निराला कभी भी अपने को जन साधारण से पृथक करके नहीं देखते। इसीलिए वह अपनी आत्मबलि देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। इसीलिए वह उन्हें प्राण दो मुझे हरो हे कि त्याग भूमि पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण प्रपत्ति में डूबने पर यह उच्छल आत्मविश्वास जग उठा है कि प्रभु की अनंत कृपा से ही यह पृथ्वी, यह मानव मन हरा भरा, पूर्ण, समृद्ध और आनंदमय होगा। उसी से गृहवन, नदी, समुद्र सभी प्रकाशमान हो उठेंगे। अंधेरे की कड़ी टूटेगी, सिर पर स्वर्गाशीष टूटेगी। वरदान, शरण या प्रभु की कृपा से मिलने वाले इस स्वर्गाशीष की प्रार्थना ही नहीं करता कवि, बल्कि उस अनामय उपलब्धि को चित्रित भी करता है। प्रार्थना और उसके प्रतिफलन का यह चित्रण ही निराला को एक अपरंपरित भक्त कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है। एक बहुत तुम्हारे मारे मारे फिरते हैं हारे बेचारे, चेतन मधुगंध के सहारे उन्हें प्राण दो मुझे हरो हे। दो, तुम्ही से ऋतु घूमती है, नए कविदल चूमती है, नए आसव झूमती है, नए गीतों नए नर्तन। तीन, खुली ही अंतः किरण सुंदर दिखे गृह वन सरित सागर, हंसे खुलकर हार बाहर अजन जन के बने मंगल। पृष्ठ संख्या 312। चार, छूते ही कनक किरण फूटेगी, कड़ी अंधेरे की टूटेगी, उसे कठिन भीत छूटेगी, मूंदा कमल खिलाओ अमृत के घूंट पिलाओ। पांच, प्रात धवल कलि गात निरामय, मधु मकरंद गंध विषदाशय, सुमन सुमन वन मन अमरण क्षय, सिर पर स्वर्गाशीष टूटी है। मुक्ति के सुख का यही निरामय वर्णन शरणागति के गीतों की अपनी विशेषता है। सारी दिशाओं में उसी की अंतः किरण खुल जाती है। हंसी के उजले प्रकाश में पृथ्वी के सारे दुखों का परिशमन हो जाता है। हृदय का कठिन भय धीरे धीरे तिरोहित हो जाता है और मन निसंशय और मुक्त होकर नया रूप धारण करता है। एक शाश्वत सौंदर्य, सुख और अप्रमेय आनंद की भावना से सारी सृष्टि आलोकित हो उठती है। आत्ममुक्ति और सार्वजनिक सार्वभौमिक मुक्ति के समन्वित आनंद की यही अभिव्यक्ति निम्नलिखित कविता में अद्वितीय रूप में प्रतिफलित हुई है। तार तार निकल गए, देखा जब नए नए तड़के जो गठे बंद, कांपा उर मधुर छंद, गूंजी ध्वनि मंद मंद, देह हुई शिथिल अये, आँख की खुली गली मिली कलित गंध कली, भीतर जो रही छली अंग सुरभि रंग छये, बंद हो गया प्रलाप, प्रशमित हो गया ताप। पृष्ठ संख्या 313। धुला धुला मिला पाप, किरण मुखर मुख उनय। मुक्ति के सुख का अभूतपूर्व वर्णन यहाँ निराला ने किया है। सारा मनस्ताप, सारे संशय, आत्मक्षय मिट गए। सुख की धीमी धीमी अनुभूति में अचानक लगा कि देह शिथिल हो गई। यहाँ शिथिल होने में थकान का भाव उतना नहीं जितना तनाव रहितता का। इस तनाव रहितता पर कवि को जैसे आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे एकाएक यह बड़ा विचित्र लगता है। प्रभु की कृपा से यह जो जीवन भर की दुख जर्जरता समाप्त हो गई, यह आश्चर्यजनक है। इसीलिए कवि अये का प्रयोग करता है। यह तो अभूतपूर्व है, अनुभूत है, आखिर यह संभव हो ही गया। हरे हर की कठिन भीत छूट ही गई। वृद्ध शरीर और दुख जर्जर मन को अंततः उस अप्रमेय आनंद की अनुभूति मिल ही गई। हृदय में फिर नए स्वर का, नए छंद का संचार हुआ। आँखों के कपाट जो बंद हो गए थे, चारों ओर जो घोर अंधकार और प्रलय के प्रवर्षण में घारा घारा कर गरज रहे थे, वह न जाने कहाँ लुप्त हो गए। आँखों का नीला आकाश धुलकर निखर आया। मन की अंतः किरण क्या फूटी। भीतर जो कली थी वह भी सुगंधी से छटपटा उठी। यह कैसा अनुभव है? अभी तक मन कैसे दिग्भ्रमित था। उसे क्यों नहीं मालूम था कि वह छली सुगंध तो उसके भीतर ही थी। कवि इस भेद के खुलते ही जैसे आनंद मग्न होकर कहता है, वह छली सुगंधि अपने रंगों से सारे अंगों में छा गई। सुगंधि और वह भी रंगीन कवि इस बिंब में अपने आनंद को बांधना चाहता है। जैसे सिर्फ सुगंधि का देने से वह उस सुख की संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, इसीलिए वह सुरभि रंग का बिंब रचता है। यही नहीं, सुख की यह मौन अनुभूति उसे अभिव्यक्त के लिए और भी व्याकुल करती है। वह समझता है कि शब्दार्थ से मौन का सनातन गुफा में उसका धीरे धीरे वह तिरोहित होना अकारण नहीं है, वही उसकी नियति है, उसके जीवन और उसकी रचना संपूर्णता की नियति। इसीलिए उसे पाप के भी धुले होने की अनुभूति होती है। अपने इसी ऊर्ध्वमुख किरण मुखर मुख से कवि शरणागति का वर्णन करता है। समय के घने अंधकार में यही किरण मुखर मुख निराला के संपूर्ण काव्य व्यक्तित्व का प्रतीक चित्र है। कंठ स्वर में तुम्हारे कवि एक ऋतुओं के विहंसते सूर्य काल में ब्रैकेट में तन घोर पूर्ण विराम शमशेर बहादुर सिंह। निराला के इन प्रपत्ति भावों के गीतों की अनुप्रेरणा और उसके विवेचन विश्लेषण के बाद एक सवाल अक्सर मन में कौंधता रहता है कि संपूर्ण भारतीय भक्ति और पृष्ठ संख्या 314 शरणागति की परंपरा में निराला को कहाँ रखा जा सकता है? उनका स्थान क्या है? क्या उनकी रचनाएं परंपरागत भक्ति के सिद्धांतों के अनुकरण स्थापन के आधार पर लिखी गई हैं? क्या उनकी प्रार्थनाओं में पातक भाव वही है जो तुलसी, सूर्य या अन्य भक्त कवियों की प्रार्थनाओं में मिलता है? क्या निराला ने भक्ति के परंपरागत सिद्धांतों का पिष्ट पेषण किया है, अथवा उनकी कोई निजी मौलिकता है? इन सारे सवालों पर जब हम उनके प्रपत्ति भाव के गीतों के संदर्भ में विचार करते हैं तो कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं। उन्हें यहाँ रखने से पहले कुछ अन्य बातों की चर्चा भी जरूरी है जो इसी से संबंधित हैं। संभवतः भक्ति साहित्य और भक्ति दर्शन की अपनी विराट परंपरा का यह अभिज्ञान निराला को भी है। उनके मन में कभी कभी यह सवाल कौंधता है कि भक्तों की लोकप्रिय प्रार्थनाओं की तुलना में उनके प्रार्थना गीत कहाँ ठहरेंगे। अपने मन की इस चिंता, दुविधा और प्रश्नहतता को निराला ने एक भक्त सरीखी विनम्रता से ही अर्चना की भूमिका में संकेतित किया है। अंतरंग विषय ब्रैकेट अर्चना के गीतों का ब्रैकेट बंद यौवन से अतिक्रांत कवि के परलोक से संबद्ध है, इसीलिए यहाँ सम्मति का फल निष्काम में ही होगा। रस सिद्धि की पड़ताल कीजिएगा तो कहना होगा कि हिंदी के भाषा साहित्य में ज्ञानी और भक्त कवियों की पंक्ति बैठी हुई है, जिनकी रचनाएं साधारण जनों के जिह्वाग्र से अमृत की धारा बहा चुकी हैं। ऐसी अवस्था में लोकप्रियता की सफलता दुराशा मात्र है। अर्चना संयोगती। निराला की इस संयोगती में दो तीन संकेत निहित हैं। पहले तो यह कवि भी मानता है कि यह आत्मजर्जर परिसमाप्त व्यक्ति की प्रार्थनाएं हैं जो यौवन से अतिक्रांत हैं और संपूर्ण मन से प्रपत्ति की भूमिका में उपस्थित हैं। दूसरे वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी इन कविताओं की रस सिद्धि की पड़ताल की जाए, क्योंकि ऐसा करने पर भक्त कवियों के आगे उसकी प्रार्थनाओं की महत्ता नगण्य साबित होगी। यह शायद भक्त निराला की विनम्रता बोल रही है। मैं इससे व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। इसी मना स्थिति में निराला ने आगे इन गीतों की उपलब्धि सिर्फ मंगल ब्रैकेट में भाव कुभाव अलख असलहूँ राम जपत मंगल दिस दसहूँ ब्रैकेट बंद की सार्वभौमिक कामना माना है। यह ठीक है कि निराला इन प्रार्थनाओं की उपलब्धि एक सार्वजनिक मंगल मानते हैं, लेकिन यहाँ आकर वह तुलसीदास की इस उक्ति के अविधार्थ से अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि अपनी प्रार्थनाओं में वह भाव कुभाव से सिर्फ राम को जपते ही नहीं, उनकी कृपा पात्र के सार्वजनिक प्रतिफल को अत्यंत गदगद और तन्मय भाव से व्यक्त भी करते हैं। सूर्य या तुलसी यह नहीं करते, वे प्रभु कृपा के अनंत सर्वव्यापी प्रसाद के सार्वजनिक आनंद के भौतिक प्रतिफलन का चित्रण कभी नहीं करते। उन्हें पाप के धुले होने की अनुभूति कभी नहीं होती। वह निजी पवित्रता और निजी सुख का तो चित्रण कर सकते हैं, लेकिन पृष्ठ संख्या 315 उसे एक सार्वजनिक आनंद की अनुभूति के रूप में चित्रित नहीं कर सकते, नहीं करते। निराला की तरह प्रभु से वह उन्हें प्राण दो मुझे हरोहे की प्रार्थना कभी नहीं करते। शायद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आत्मयोग से सार्वजनिक सेवा निवृत्ति में मनुष्य या सन्यासी के उतरने की प्रक्रिया का अंतरंग प्रभाव निराला की इस मना स्थिति पर हो, जहां वह अपनी सारी व्यक्तिगत दुख जर्जरता से छुटकारा पाने के लिए आत्ममुक्ति की व्यक्तिगत प्रार्थना करते हुए भी तुरंत एक सार्वजनिक मोक्ष की चिंता पर उतर आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि निराला बावजूद निजी प्रपत्ति के आत्म मुमुक्षु की चिंता के अपनी सार्वजनिक मुक्ति की चिंता के कारण भक्ति की परंपरा से किंचित अलग दिखाई देते हैं। उनका परलोक भी इसी लोक के भीतर है। वह अलग से कृपा भाव की प्राप्ति के द्वारा भक्तों के अनामय विष्णु लोक के रूप में उसे पाने की चेष्टा नहीं करते। इसीलिए वह स्वर्ग को धरा पर उतारने या सिर पर स्वर्गाशीष टूटने की बात भी करते हैं। इसीलिए उनका पातक भाव सूरदास के मैं पतित तुम पतित पावन से अलग है। निराला बानक बिठाने की परिकल्पना कहीं नहीं करते। भक्ति की गदगद और कारुणिक मना स्थिति में प्रभु से उक्त वैचित्र्य का यह अवसर निराला के सामने नहीं है। इसीलिए बानक बनने की खोज में निराला अपने प्रार्थना गीतों में कहीं नहीं है। इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं में संप्रदायबद्ध भक्त कवियों से सघनता तन्मयता और आत्ममुखरता अधिक है। निराला का यह कथन भी सच नहीं लगता कि संतों और भक्तों की रचनाओं के आगे उनकी रचनाओं की सफलता एक दुराशा मात्र है। दरअसल लोगों का ध्यान अभी उनके भक्ति गीतों की ओर गया ही नहीं है। दूसरे निराला के आलोचक भी उनके भक्ति काव्य को भक्ति का पिष्ट पेषण मानकर विश्लेषण करते रहे हैं। वैसे भक्ति के सनातन सिद्धांतों के संदर्भ में निराला के गीतों को देखा परखा जाए तो मोटे मोटे रूप में भक्ति के सारे सिद्धांत और सारी विशेषताएं उनके इन गीतों में मिल जाएंगी, क्योंकि प्रपत्ति का एक सूक्ष्म तार तो हर जगह जुड़ा ही है। कोई भी शास्त्रीय आलोचक उनके भक्ति गीतों में शरणागति के छहों क्रम ब्रैकेट में अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षयिष्यति विश्वास गोपतृत्व वर्णम आत्मनिक्षेप और कार्पण्यम नारद पंचरात्र ब्रैकेट बंद को आसानी से ढूंढ सकता है और उसके उदाहरण भी उसकी रचनाओं से दे सकता है। उसे पोषणम तदनुग्रह वाली भागवत की उक्ति भी निराला के गीतों में चरितार्थ होती हुई दिखाई दे सकती है। यदि वह और भी पीछे जाए तो उसे निराला की इन प्रार्थनाओं में ऋग्वेद संहिता का यह मंत्र भी ध्वनित होता हुआ सुनाई पड़ सकता है। या आपिर नित्यम वरुण प्रिय सन त्वमांगासी कृणवत सखाते। पृष्ठ संख्या 316। माँ एन स्वंतो यच्छिन भुजेम यंदिष्माह विप्रहा उस्तुवती वरुथम। ब्रैकेट में मैं तुम्हारा आप्त प्रियजन हूँ। मैंने तुम्हारे प्रति अनेक पाप किए हैं, इन पापों को क्षमा कर मुझे अपनी मित्रता प्रदान करो। हे अच्छिन, हे अद्वितीय विचित्र कर्मों के उद्भावक, मेरे पापों को दूर करो, जिससे अपराध भाव से ग्रस्त मैं अपना ही भोजन ना करूं, आत्म भक्षण में प्रवृत्त ना हो जाऊं। हे वरुण, तुम बुद्धिमान हो, इस प्रार्थी को अशुभ निवारक वर दो। ब्रैकेट बंद। लेकिन सच यह है कि निराला के इन भक्ति गीतों में किसी भक्ति सिद्धांत को सचेत रूप से समाहित करने की चेष्टा नहीं है। उनकी प्रार्थनाओं को किसी भी मतवाद में फिट इन करना उचित नहीं है। वह उनके अंतर्वाह के अनंत दुखांतों का प्रतिफलन है, उनके आत्म साक्षात्कार की सहज अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए उनका दुरीति भी पवित्रता की अनुभूति से मंडित है। मृत्यु के भयावह अंधेरे में उतरते हुए टटोलते टटोलते उन्हें अशरण शरण उन चरणों का स्पर्श हुआ है। मृत्यु के सहज स्वीकार के द्वारा भयमुक्त होने की प्रक्रिया में ही वह निरामय प्रपत्ति भाव में उतरते हैं। दरअसल उनकी भक्ति भी आधुनिक मनुष्य की आस्था अनास्था की विडम्बनापूर्ण द्विधाग्रस्त मना स्थिति का प्रतिफलन है। इसीलिए वह भक्तों की पूरी परंपरा से अलग होकर प्रार्थना की व्यर्थता की बात भी करते हैं। उनके भक्ति गीतों की सही व्याख्या दरअसल इसी दृष्टिकोण से संभव है। किए उपाय सैकड़ों तन के मन के चरण मिले सज्जन के व्यर्थ प्रार्थना जैसे अब है। समाप्त। पृष्ठ संख्या 317। परिशिष्ट। निराला द्वारा रचित काव्य कृतियाँ। काव्य कृतियाँ संस्करण प्रकाशन वर्ष प्रकाशन संस्थान एक अनामिका प्राचीन। संस्करण प्रथम प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी नवजादिक लाल श्रीवास्तव कलकत्ता अप्राप्य। दो परिमल प्रथम 1930 ईस्वी गंगा पुस्तकमाला लखनऊ। तीन गीतिका प्रथम 1936 ईस्वी भारती भंडार इलाहाबाद। चार अनामिका नवीन प्रथम 1937 ईस्वी भारती भंडार इलाहाबाद। पाँच तुलसीदास प्रथम 1938 ईस्वी भारती भंडार इलाहाबाद। छः कुकुरमुत्ता प्रथम 1942 ईस्वी युग मंदिर उन्नाव। द्वितीय 1948 ईस्वी राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी। तृतीय 1952 ईस्वी किताब महल इलाहाबाद। चतुर्थ 1969 ईस्वी लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। सात अरिमा प्रथम 1943 ईस्वी युग मंदिर उन्नाव। द्वितीय 1971 ईस्वी लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। आठ वेला प्रथम 1943 ईस्वी हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस इलाहाबाद। द्वितीय 1962 ईस्वी निरुपमा प्रकाशन प्रयाग तथा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। नौ नए पत्ते प्रथम 1946 ईस्वी हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस इलाहाबाद। द्वितीय 1962 ईस्वी निरुपमा प्रकाशन प्रयाग तथा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। दस अपरा संचयन प्रथम 1946 ईस्वी साहित्यकार संसद प्रयाग। 11 अर्चना प्रथम 1950 ईस्वी कला मंदिर प्रयाग। द्वितीय 1962 ईस्वी निरुपमा प्रकाशन प्रयाग तथा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। 12 आराधना प्रथम 1953 ईस्वी साहित्य संसद प्रयाग। 13 गीत गुंज प्रथम 1954 ईस्वी हिंदी प्रचारक पुस्तक माला वाराणसी। पृष्ठ संख्या 318। द्वितीय 1959 ईस्वी हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी। तृतीय 1970 ईस्वी वसुमती इलाहाबाद। 14 सांध्य काकली प्रथम 1969 ईस्वी वसुमती इलाहाबाद मरणोपरांत प्रकाशित। विवरण। निराला की काव्य कृतियों के प्रकाशन संबंधी अभी तक प्राप्त यह अंतिम विवरण है। अनामिका नामक उनका काव्य संग्रह 1923 में कलकत्ते से छपा। उसका प्रकाशन संस्थान एक व्यक्ति है। इस ग्रंथ में सिर्फ 9 कविताएं थीं, जिसमें अकेले सबसे प्रसिद्ध कविताएं जूही की कली और अधिवास हैं। अब तक संग्रह अप्राप्य हैं। ब्रैकेट में इसकी एक प्रति सन 1960 में मैंने कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखी थी, ब्रैकेट बंद। बाद में निराला ने इस संग्रह की 7 कविताएं अपने अगले संग्रह परिमल में शामिल कर ली। परिमल उनका दूसरा और मेरी नज़र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संग्रह है। इसमें संकलित कविताओं का विधिवत विभाजन और एक लंबी भूमिका इस बात का प्रमाण है कि निराला ने इसके प्रकाशन में सर्वाधिक सजगता बरती है। इसके बाद उनके सिर्फ एक संग्रह गीतिका में विस्तृत भूमिका मिलती है। उसके आगे उनके संग्रहों में छोटे छोटे प्राक-कथन, आवेदन या स्वायुक्तियां हैं। परिमल के प्रकाशन के पीछे यह निराला की महत्वाकांक्षा कविता को छंदमुक्त करके उसे एक नए धरातल पर प्रतिष्ठित करने की है, तो गीतिका में सुर तालबद्ध गीतों की रचना करके खड़ी बोली के इस लांछन को मार्जित करने का प्रयत्न है कि उसमें संगीतात्मकता की गुंजाइश नहीं है। इन दोनों संग्रहों की इस महत्वाकांक्षा के भीतर से निराला के काव्य संघर्ष के विभिन्न फ्रंट्स देखे जा सकते हैं। अनामिका नवीन सर्वथा एक नया काव्य संग्रह है और उसमें पुरानी अनामिका का कोई भी चिन्ह नाम को छोड़कर अवशिष्ट नहीं है। नाम की इस पुनरावृत्ति के पीछे निराला ने जो कारण बताया है वह उचित ही है। बाबू महादेव प्रसाद सेठ के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही उनकी पहली काव्यकृति अनामिका प्रकाशित हुई थी। अतः उन्हीं की स्मृति को समर्पित करने के लिए उन्होंने अपने इस संग्रह का नाम फिर अनामिका रखा। यह संग्रह निराला की रचना प्रक्रिया के विभिन्न क्रियाशील स्तरों का श्रेष्ठतम नमूना है। उनका अंता संगीत, राष्ट्रीय उद्बोधन, लंबी कथात्मक कविताएं, ब्रैकेट में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ब्रैकेट बंद, काव्य आभिजात्य से मुक्ति का प्रयास, ऋतु प्रार्थनाएं और प्रपत्ति भाव रचना प्रक्रिया के इन सभी स्तरों की रचनाएं इस संग्रह में संकलित हैं। यह एक ऐसा काव्य संग्रह है जो अकेले ही निराला के संपूर्ण पृष्ठ संख्या 319 रचना व्यक्तित्व का प्रतीकात्मक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तुलसीदास एक लंबी कथात्मक कविता है। कुकुरमुत्ता के अतिरिक्त दूसरी सिर्फ यही एक लंबी कविता है जो स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है। वैसे इस रूप में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति तथा शिवाजी का पत्र को भी अलग स्वतंत्र रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित किया जा सकता है। अरिमा का प्रथम प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में युग मंदिर उन्नाव से हुआ। उसके 28 वर्षों बाद उनके इतने महत्वपूर्ण इस संकलन का द्वितीय संस्करण लोक भारती प्रकाशन से सन 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। वेला और नए पत्ते की प्रकाशन तिथि कई विद्वानों ने 1946 ईस्वी ही रखी है, लेकिन वेला का आवेदन लिखते हुए निराला ने उसके नीचे तिथि 15 जनवरी 1943 ईस्वी दी है। मैंने इसे सही मानकर अगर यह प्रूफ की गलती नहीं है तो वेला की प्रकाशन तिथि इसी को माना है। नए पत्ते का प्रकाशन हिंदी कविता के इतिहास में एक महान घटना है। इसी संग्रह से निराला अपनी स्वरचित अभिजात काव्य समृद्धि को ध्वस्त करके जनभूमिका में उतरकर भारतीय साहित्य के 3000 वर्षों के इतिहास में सर्वथा एक नए ढंग की काव्य रचना को प्रतिष्ठित करते हैं। इसमें कुकुरमुत्ता की 7 कविताओं, कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण एक कविता संग्रह है जिसमें कुकुरमुत्ता के अतिरिक्त उसी रंग की 7 और कविताएं शामिल हैं, को भी निराला ने शामिल कर लिया है। इसी के बाद सन 1948 ईस्वी में कुकुरमुत्ता दोबारा जब छपा तो यह एक लंबी कविता पुस्तक तुलसीदास की तरह रह गई, काव्य संग्रह नहीं। कुकुरमुत्ता का चौथा संस्करण लोक भारती प्रकाशन मेरी भूमिका के साथ प्रकाशित हुआ है। अर्चना उनके प्रपत्ति भाव के श्रेष्ठतम गीतों का संकलन है। आराधना भी लगभग इसी तरह का संग्रह है। निराला के अगले काव्य संग्रह गीत गुंज और मरणोपरांत प्रकाशित अंतिम संग्रह सांध्य काकली की स्थिति विचित्र है। गीत गुंज के 25 गीत सांध्य काकली में भी हैं। 6 गीत आराधना से और एक अर्चना से उद्धृत है। इस प्रकार गीत गुंज में 52 गीतों में से 32 गीत दूसरे संग्रहों में हैं। मेरा अनुमान है कि गीत गुंज के प्रथम बार प्रकाशन के समय निराला की कांपी में, जिसके आधार पर सांध्य काकली का संपादन श्री श्री नारायण चतुर्वेदी ने बाद में किया है, केवल यही 25 गीत रहे होंगे। बाद में उसी कापी में निराला आगे की कविताएं लिखते गए होंगे जिसका प्रकाशन मरणोपरांत सांध्य काकली नाम से हुआ। दरअसल प्रकाशकों को कविताएं मिला देनी चाहिए थी। अब यदि सांध काकली को हम एक पूरा संग्रह मान लें तो गीत गुंज परिशिष्ट को छोड़कर में केवल 12 गीत रह जाते हैं और उन्हें भी सांध काकली में शामिल किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 320। निराला की कविताओं में से चुनी हुई कविताओं का अभी तक केवल एक ही संचयन अपरी नाम से प्रकाशित हुआ है। इसका संपादन महादेवी ने किया है। इस संचयन के अतिरिक्त कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से निराला की कविताओं में से संचयन प्रकाशित हो सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संचयन होंगे ऋतु प्रार्थनाएं, भक्ति गीत और काव्य अभिजात से मुक्ति की रचनाएं। निराला की काव्य कृतियों के प्रकाशन के सिलसिले में मैंने यह जो संस्करणों की सूचना दी है उनके बारे में यह जानना जरूरी है कि जिन कृतियों के आगे सिर्फ प्रथम संस्करण दिया गया है उसका अर्थ यह है कि वे आज भी अपने उसी प्रथम प्रकाशन संस्थान द्वारा प्रकाशित होती चली आ रही हैं। उसका यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि उनके और संस्करण हुए ही नहीं, लेकिन भारतीय भंडार साहित्य संसद और गंगा पुस्तकमाला को छोड़कर किसी दूसरे प्रकाशन संस्थान ने निराला की काव्य पुस्तकों के अगले संस्करणों की आवृत्ति सूचना नहीं दी है। जिन काव्य कृतियों के आगे प्रथम संस्करण के अलावा अगले संस्करणों की सूचना मैंने दी है उसका अर्थ यह है कि उनके प्रकाशन संस्थान बदल गए हैं। हो सकता है किसी भी प्रकाशन संस्थान ने उनकी कृतियों के एक से ज़्यादा संस्करण किए हों, लेकिन ऐसी सूचना उन कृतियों में नहीं मिलती, बल्कि उसकी जगह नवीन संस्करण लिखा हुआ मिलता है। कुछ पुस्तकों के एक ही संस्करण पर दो प्रकाशन संस्थानों के नाम हैं। उसका अर्थ यह है कि प्रकाशित तो पहले प्रकाशक ने किया, लेकिन वही संस्करण फिर उन्होंने दूसरे प्रकाशक को हस्तांतरित कर दिया। निराला की कविताओं के प्रकाशन की एक और समस्या मेरे सामने आई। उनकी पुस्तकों के अधिकांश नए संस्करणों में अनेक कविताएं अशुद्ध छपी हैं। दिन दिन उनकी कविताओं का भ्रष्ट पाठ बढ़ता जा रहा है। किसी भी प्रकाशक को इसकी चिंता नहीं है। प्रूफ रीडर अपने मन से उनकी रचनाओं का पाठ संशोधन कर रहे हैं। इस ओर मैं निराला के पाठकों और आलोचकों का ध्यान आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। वह मेरे जैसे आदमी को नर्वस कर देने वाली स्थिति है। निराला की अधिकांश काव्य कृतियों के प्रथम संस्करण अभी पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। अच्छा हो उनके नए संस्करण और उनके प्रथम संस्करणों से मिलाकर छापे जाएं। लेखक।